एकेत्र ज्ञान गोष्ठी में आप सबका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी मेजबान
और मैं आपका दूसरा मेजबान। और आज हम उतर रहे हैं फिलॉसफी की दुनिया में, है ना?
बिल्कुल, एक ऐसी किताब के साथ जिसने मतलब सोचने का तरीका ही बदल दिया कई लोगों का।
हाँ, हम बात कर रहे हैं डेविड ह्यूम की। स्कॉटिश फिलोसोफर थे और उनकी किताब है अ ट्रीटीज ऑफ ह्यूमन नेचर, हिंदी में कहें तो मानव स्वभाव पर एक ग्रंथ।
सही, और ये लिखी तो गई थी 18वीं सदी में, पर इसके सवाल, अरे बाप रे, आज भी उतने ही ताजे लगते हैं,
है ना? कमाल की बात है। ये किताब सीधे उन सवालों से जूझती है जो हम सब कभी ना कभी सोचते हैं।
जैसे कि
भाई, हम पक्के तौर पर क्या जान सकते हैं? ये जो हमारे विश्वास हैं, हमारी मान्यताएं, ये बनती कैसे हैं आखिर?
हाँ, और वो बड़ा सवाल, सही गलत, मोरालिटी, इसका बेसिस क्या है, कहाँ से आता है ये सेंस?
और ह्यूम के जवाब वो अक्सर चौंका देते हैं, कभी कभी तो थोड़ा हिला भी देते हैं।
हाँ, मतलब ये किताब सिर्फ जानकारी नहीं देती, ये तो हमारे सोचने के तरीके पर ही सवाल उठा देती है, जैसे कोई हमारे दिमाग का ऑपरेटिंग सिस्टम चेक कर रहा हो।
सही कहा। तो चलिए पहले थोड़ा जानते हैं डेविड ह्यूम के बारे में। ये शख्स थे कौन आखिर?
हाँ, तो डेविड ह्यूम 18वीं सदी स्कॉटलैंड, बड़े माने हुए थिंकर थे, फिलोसोफर, हिस्टोरियन, निबंधकार भी।
और वो दौर था एनलाइटनमेंट का, मतलब प्रबोधन काल, ज्ञान का विस्फोट हो रहा था यूरोप में, और ह्यूम उसके एक अहम किरदार थे।
और पता है मजे की बात, ज्यादातर पढ़ाई खुद ही की थी उन्होंने, कॉलेज तो गए पर जल्दी छोड़ दिया, शायद इसीलिए वो जमे जमाए विचारों को चैलेंज कर पाए।
हाँ, हो सकता है। उन्हें जॉन लॉक और जॉर्ज बर्कली के साथ गिना जाता है, ब्रिटिश अनुभववाद की तिकड़ी।
अनुभववाद यानी एम्पिरिसिज्म।
हाँ, एम्पिरिसिज्म मतलब ये सोच कि हमारा सारा ज्ञान हमारे एक्सपीरियंस से, हमारी इंद्रियों के अनुभव से आता है, दिमाग में पहले से कुछ नहीं होता।
अच्छा, और ह्यूम की एम्बिशन भी कम नहीं थी, वो बनना चाहते थे नैतिक विज्ञान के न्यूटन।
हाँ, जैसे न्यूटन ने फिजिकल वर्ल्ड के नियम खोजे, ह्यूम खोजना चाहते थे इंसानी मन के, इंसानी व्यवहार के नियम, वो भी सिर्फ अनुभव और ऑब्जर्वेशन के आधार पर।
और वो डरे नहीं अपने तर्कों को एंड तक ले जाने में, चाहे वो भगवान पर सवाल हो, आत्मा पर, या दुनिया के बारे में जो सदियों से चला आ रहा था उस पर।
बिल्कुल। हालांकि जब ये किताब, ये ट्रीटीज छपी, ह्यूम बहुत यंग थे, मुश्किल से 25-26 के, और किताब वो एकदम फ्लॉप हो गई।
हाँ, सुना है ह्यूम ने खुद कहा था कि ये प्रेस से मुर्दा पैदा हुई।
हाँ हाँ हाँ, कुछ ऐसा ही। लेकिन बाद में इसकी आइडियाज ने खासकर इमैनुअल कांट जैसे फिलोसोफर्स पर इतना गहरा असर डाला कि फिलॉसफी की दिशा ही बदल गई।
कमाल है। तो चलिए अब जरा इस मुर्दा पैदा हुई किताब के अंदर चलते हैं, देखते हैं इसमें ऐसा क्या था।
जरूर। तो ये किताब आखिर है किस बारे में? इसका लक्ष्य बहुत बड़ा था, मनुष्य का विज्ञान बनाना।
मनुष्य का विज्ञान मतलब
इंसान कैसे सोचता है, कैसे महसूस करता है, कैसे फैसले लेता है, इसकी एक सिस्टमैटिक जांच, वो भी अनुभव के आधार पर। ह्यूम जानना चाहते थे कि हमारा ज्ञान, हमारी भावनाएं, हमारी नैतिकता, इनकी असली जड़ क्या है और कहां तक हम जान सकते हैं, लिमिट्स क्या हैं।
अच्छा, और किताब का निचोड़ क्या निकला, मेन आर्ग्यूमेंट क्या है?
मेन आर्ग्यूमेंट ये है कि हमारे जो सबसे गहरे, सबसे बुनियादी विश्वास हैं,
जैसे
कारण और प्रभाव, कि एक चीज दूसरी को पैदा करती है, या ये विश्वास कि हमारे बाहर एक दुनिया है, या हमारी अपनी पहचान का सेंस कि मैं कौन हूँ, या फिर सही गलत का फैसला।
हाँ, ये तो बहुत फंडामेंटल बिलीव्स हैं।
बिल्कुल। तो ह्यूम कहते हैं कि ये सब विश्वास हमें किसी ऊपर वाले से या सिर्फ लॉजिक लड़ाने से नहीं मिलते।
तो फिर कहाँ से आते हैं?
ह्यूम का जवाब, ये सब हमारे सेंस एक्सपीरियंस से, हमारी इंद्रियों के अनुभव से पैदा होते हैं, और फिर हमारी आदतें, हमारे रोज के रिवाज और हमारी भावनाएं, वो इन्हें शेप देती हैं।
ओहो, मतलब लॉजिक नहीं, आदत और भावनाएं। ये तो काफी रेडिकल बात थी उस टाइम के लिए।
हाँ बिल्कुल। जैसे ह्यूम कह रहे हो, भाई जिसे तुम पक्का ज्ञान समझ रहे हो, वो असल में तुम्हारी दिमागी आदतें और तुम्हारी फीलिंग्स हैं। किताब का सबटाइटल भी कुछ ऐसा ही इशारा करता है, नैतिक विषयों में तर्क की प्रयोगात्मक पद्धति को प्रस्तुत करने का एक प्रयास। मतलब मन को वैसे ही स्टडी करो जैसे साइंटिस्ट नेचर को करते हैं, देखकर, परखकर।
ओके, किताब के तीन हिस्से हैं, है ना?
हाँ, पहला समझ यानी अंडरस्टैंडिंग पर, दूसरा जुनून यानी पैशंस या भावनाएं, और तीसरा नैतिकता यानी मॉरल्स पर।
तो पहले समझ वाले हिस्से की बात करते हैं, यहीं पर ह्यूम के सबसे फेमस आइडियाज हैं।
हाँ, और वो शुरू करते हैं दो शब्दों से, इंप्रेशंस और आइडिया, इनमें फर्क बताते हैं।
इम्प्रेशंस और आइडियाज सुनने में थोड़े टेक्निकल लगते हैं।
है नहीं वैसे, देखो इम्प्रेशन मतलब सीधा ताजा लाइव एक्सपीरियंस, जैसे गर्म चाय का कप छू लिया तो जो जलन हुई, या बारिश की तेज आवाज सुनी, ये बहुत तेज होते हैं, बहुत विविड।
ठीक है, और आइडिया?
आइडिया है उसी एक्सपीरियंस की हल्की धुंधली याद या उसका ख्याल, जैसे बाद में उस जलन को याद करना या बारिश के बारे में सोचना। आइडिया हमेशा इम्प्रेशन से फीका होता है, कमजोर होता है।
ओके, समझ गई। ताजा अनुभव मतलब इम्प्रेशन और उसकी याद मतलब
आइडिया। एग्जैक्टली। और यहीं ह्यूम अपना पहला बड़ा नियम देते हैं, कॉपी प्रिंसिपल। वो कहते हैं कि हर सिंपल आइडिया, हर साधारण विचार किसी ना किसी पिछले इम्प्रेशन की कॉपी होता है।
हर विचार?
हाँ, हर सिंपल विचार मतलब हम ऐसी किसी चीज का विचार बना ही नहीं सकते जिसका अनुभव हमने कभी किसी ना किसी रूप में न किया हो। उन्होंने चैलेंज किया था, कोई ऐसा सिंपल आइडिया सोचकर बताओ जिसका कोई पिछला इम्प्रेशन न हो।
अरे वाह, तो इसका मतलब हमारी पूरी सोच की बुनियाद एक्सपीरियंस है।
बिल्कुल, ह्यूम के लिए तो यही सच है। और इसी बुनियाद पर वो आते हैं अपने सबसे मशहूर एनालिसिस पर, कारण और प्रभाव, कॉजेशन।
कॉजेशन, जैसे एक बिलियर्ड बॉल दूसरी से टकराई और दूसरी चल पड़ी।
हाँ बिल्कुल, यही उदाहरण। हम फौरन कहते हैं पहली बॉल ने दूसरी को चलाया, उसमें कोई ताकत या फोर्स डाली।
हाँ ये तो दिखता है साफ साफ, इसमें शक कैसा?
ह्यूम यही रोकते हैं, कहते हैं रुको, जरा ध्यान से देखो, क्या तुमने वाकई वो ताकत या वो जरूरी कनेक्शन देखा या कुछ और देखा?
कुछ और देखा मतलब?
ह्यूम कहते हैं हमने असल में सिर्फ तीन चीजें देखी। एक, दोनों बॉल्स का आपस में छूना, निकटता, कॉन्टिग्विटी।
दो,
पहली बॉल पहले हिली, दूसरी बाद में, समय में क्रम, प्रायोरिटी इन टाइम।
और तीन?
और तीन हमने ऐसा बार बार होते देखा है, लगातार साथ होना, कॉन्स्टेंट कंजंक्शन।
ठीक है,
लेकिन वो जो रहस्यमयी ताकत या जरूरी कनेक्शन है जिससे पहली बॉल दूसरी को चलने पर मजबूर करती है, वो तो कभी दिखाई नहीं दी।
अरे ये तो कभी सोचा ही नहीं इस तरह, तो फिर ये विश्वास कहाँ से आता है कि पहली बॉल ही दूसरी के चलने का कारण है?
ह्यूम का जवाब दिमाग हिला देता है। वो कहते हैं ये विश्वास लॉजिक से नहीं आता, ये आता है आदत से, कस्टम और हैबिट।
आदत से? कैसे?
बार 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 दो घटनाओं को एक साथ होते देखने के बाद हमारा मन उम्मीद करना सीख जाता है। जैसे ही हम पहली घटना देखते हैं, टकराओ, हमारा दिमाग अपने आप आदत की वजह से दूसरी घटना, दूसरी बॉल का चलना की उम्मीद करने लगता है। उसका एक धुंधला सा आइडिया बना लेता है।
अच्छा,
ये जो अंदरूनी उम्मीद की फीलिंग है, ये जो दिमाग में एक धक्का सा लगता है कि हाँ अब ये होगा, ह्यूम कहते हैं यही वो इम्प्रेशन है जिससे हमें जरूरी कनेक्शन का आइडिया मिलता है।
बाप रे, मतलब कारण कार्य का नियम दुनिया में नहीं, हमारे दिमाग की आदत में है।
ये तो बहुत बड़ा दावा है।
है ना, हम अपनी दिमागी आदत को बाहर दुनिया पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और इसी से जुड़ती है वो इंडक्शन की समस्या,
प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन।
हाँ सुना है।
इसका मतलब है कि हमारे पास कोई पक्का लॉजिकल सबूत नहीं है कि भविष्य हमेशा अतीत जैसा ही होगा, सूरज कल उगेगा, आग हमेशा जलाएगी। ये सब हमारी बहुत मजबूत आदतें हैं, गहरी उम्मीदें हैं, पर कोई लॉजिकल गारंटी नहीं है। हम बस मानकर चलते हैं कि प्रकृति यूनिफॉर्म रहेगी।
ओ गॉड, ये तो सच में सोचने पर मजबूर करता है। पर ह्यूम यही नहीं रुके थे शायद।
नहीं, बिल्कुल नहीं, उन्होंने एक और बड़े विश्वास की जड़ें हिला दी। हमारी अपनी पहचान, हमारा स्व, सेल्फ, मैं।
हमारा मैं, हम सब मानते हैं ना कि हमारे अंदर एक मैं है जो बचपन से बुढ़ापे तक एक ही रहता है, एक कंटिन्यूअस चीज।
हाँ बिल्कुल, यही कॉमन सेंस है। लेकिन ह्यूम कहते हैं अच्छा जरा अपने अंदर झांको, पूरी ईमानदारी से देखो क्या मिलता है।
अंदर झांक कर?
हाँ, इंट्रोस्पेक्शन करो। क्या तुम्हें कोई एक सिंगल स्थिर हमेशा रहने वाला मैं मिलता है, या सिर्फ विचारों, भावनाओं, यादों, सेंसेशंस, इनका एक लगातार बहता हुआ झरना सा मिलता है?
शायद दूसरा वाला ही, चीजें आती जाती रहती हैं दिमाग में।
ह्यूम भी यही कहते हैं, हमें सिर्फ ये बदलती हुई धारणाएं ही मिलती हैं, वो एक ठोस मैं कहीं नजर नहीं आता।
तो फिर मैं क्या है अगर वो ठोस चीज नहीं है तो?
ह्यूम का वो मशहूर जवाब है, स्व या मैं सिर्फ अलग अलग धारणाओं का एक बंडल या गठरी है जो बहुत तेजी से एक दूसरे के पीछे आती जाती रहती हैं, एक सतत प्रवाह है।
बंडल मतलब जैसे लकड़ियों का गट्ठर?
हाँ कुछ वैसा ही समझ लो। ये जो हमें लगता है ना कि हम एक ही हैं शुरू से आखिर तक, वो हमारी याददाश्त और कल्पना का काम है। वो इन बिखरे हुए अनुभवों को जोड़कर एक कहानी सी बना लेती है। असल में कोई परमानेंट एंटिटी नहीं है।
वाह, मतलब मैं एक कहानी है जो हम खुद को सुनाते हैं।
ये तो दिमाग घुमा देने वाला है।
है ना? तो देखो, पहले हिस्से में ह्यूम ने हमारी समझ की पूरी नींव हिला दी। कारण कार्य को आदत बताया, मैं को धारणाओं का बंडल कह दिया। अब वो आते हैं दूसरे हिस्से पर।
दूसरा हिस्सा जुनून यानी पैशंस, भावनाएं। हाँ, और यहां ह्यूम एक और बड़ा धमाका करते हैं। वो कहते हैं कि इंसान के एक्शन का, हमारे कामों का असली ड्राइवर तर्क, रीजन नहीं है।
तर्क नहीं है तो फिर क्या है?
भावनाएं, पैशंस। उनका वो फेमस कोट याद है, तर्क जुनून का गुलाम है और होना भी चाहिए।
रीजन इज एंड ऑट ओनली टू बी द स्लेव ऑफ द पैशंस।
ये तो बहुत सुना है। इसका मतलब क्या है? क्या तर्क एकदम बेकार है?
नहीं, बेकार नहीं, मतलब ये है कि हमारे लक्ष्य, हमारी इच्छाएं, हमें क्या चाहिए, क्या करना है, ये सब हमारी भावनाएं तय करती हैं, हमारा पैशन तय करता है।
अच्छा, तर्क का काम बस इतना है कि वो उन लक्ष्यों तक पहुंचने का सबसे अच्छा, सबसे एफिशिएंट रास्ता बताए। जैसे अगर मुझे आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, ये भावनाएं हैं, पैशन है।
हाँ,
तो तर्क मुझे बताएगा कि दुकान कहाँ है, जेब में पैसे हैं या नहीं, कौन सा फ्लेवर लेना ठीक रहेगा। लेकिन तर्क ये तय नहीं करेगा कि आइसक्रीम खाने की इच्छा करना सही है या गलत। वो काम भावनाओं का है।
अच्छा, तो मतलब फैसले दिल लेता है, दिमाग बस रास्ता सुझाता है। ये कह रहे हैं ह्यूम।
मोटे तौर पे हाँ, ह्यूम के लिए कोई काम अपने आप में लॉजिकल या इलॉजिकल नहीं होता। सिर्फ हमारे विश्वास दुनिया के बारे में लॉजिकल या इलॉजिकल हो सकते हैं।
दिलचस्प।
वो फिर गर्व, शर्म, प्यार, नफरत, इन सब भावनाओं का बड़ा डिटेल एनालिसिस करते हैं कि ये कैसे पैदा होती हैं, किन चीजों से जुड़ी होती हैं।
ओके, और फिर आता है तीसरा हिस्सा, नैतिकता, मोरालिटी।
हाँ, यहां सवाल ये है, हम कैसे तय करते हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा, क्या सही है, क्या गलत?
और इसका जवाब भी क्या भावनाओं से जुड़ा है?
बिल्कुल, ह्यूम कहते हैं ये फैसले भी तर्क से नहीं आते, ये आते हैं भावना से, सेंटिमेंट से।
भावना से कैसे?
जब हम कोई काम देखते हैं या उसके बारे में सोचते हैं, मान लो किसी को दान देते हुए देखा, तो हमारे अंदर एक खास तरह की अच्छी, सुखद भावना, फीलिंग ऑफ अप्रूवल पैदा होती है।
हाँ, होती है।
और जब हम कोई क्रूर काम देखते हैं, किसी को तकलीफ पहुंचाते हुए, तो एक बुरी, अप्रिय भावना, फीलिंग ऑफ डिसअप्रूवल उठती है। ह्यूम कहते हैं यही भावनाएं हमारे नैतिक फैसलों का आधार हैं। अच्छा या बुरा उस काम की कोई खूबी नहीं, बल्कि हमारे अंदर उठने वाली फीलिंग है।
ओहो, तो मतलब मोरालिटी ऑब्जेक्टिव नहीं, सब्जेक्टिव है, हमारी फीलिंग्स पर बेस्ड है।
हाँ, ह्यूम के अनुसार तो यही है, और यही उन्होंने वो मशहूर इज ऑट प्रॉब्लम भी उठाई थी।
इज ऑट प्रॉब्लम ये क्या है?
उन्होंने देखा कि लोग अक्सर बातों बातों में या दार्शनिक लेखों में भी तथ्यात्मक बयानों से कि दुनिया ऐसी है, इज, सीधे नैतिक आदेशों पर कूद जाते हैं कि इसलिए हमें ऐसा करना चाहिए, ऑट।
अच्छा,
जैसे कोई कहे इंसान स्वभाव से स्वार्थी है, इज, इसलिए हर किसी को सिर्फ अपना फायदा देखना चाहिए, ऑट। ह्यूम ने पूछा, भाई ये है से चाहिए पर छलांग कैसे लगाई, इसका लॉजिकल कनेक्शन क्या है? आप सिर्फ तथ्यों से सीधे सीधे नैतिक मूल्यों पर तर्क के जरिए नहीं पहुंच सकते।
बात तो सही है।
हाँ, इससे ऑट पर जाने के लिए बीच में भावनाओं का, सेंटिमेंट का पुल चाहिए। जैसे सिर्फ ये जानना कि कोई भूखा है, इज, इससे ये लॉजिकली साबित नहीं होता कि हमें उसे खाना देना चाहिए, ऑट। ये चाहिए वाला फैसला हमारी हमदर्दी, हमारी नैतिक भावना से आता है।
समझ गया। और उन्होंने सहानुभूति पर काफी जोर दिया था, है ना, सिंपथी।
बिल्कुल, ह्यूम मानते थे कि हम इंसानों में दूसरों की भावनाओं को महसूस करने की, उनके सुख दुख में शामिल होने की एक कुदरती क्षमता होती है, सिंपथी।
सिंपथी,
और यही सिंपथी नैतिकता की जड़ है। इसी से दया, उदारता जैसे गुण पैदा होते हैं,
और न्याय वगैरह, जस्टिस।
हाँ, उन्होंने प्राकृतिक गुणों जैसे दया और कृत्रिम गुणों जैसे न्याय, वादे निभाना में फर्क किया। न्याय जैसी चीजें उनके हिसाब से समाज को चलाने के लिए इंसानों के बनाए हुए नियम या समझौते हैं, कन्वेंशंस। हम उन्हें इसलिए अच्छा मानते हैं क्योंकि वो समाज के लिए उपयोगी हैं, सबके फायदे के लिए हैं।
बिल्कुल,
ये सीधे सिंपथी से नहीं बल्कि उपयोगिता और सामाजिक समझौते से आते हैं। वाह,
तो ह्यूम ने तो मतलब ज्ञान, पहचान, कारण कार्य, भावनाएं, नैतिकता, सबको अनुभव और भावनाओं के चश्मे से देखा।
बिल्कुल, नई तरीके से।
हाँ,
एक तरह से उन्होंने इंसान को उसकी जमीन पर वापस ला दिया, आसमान से उतारकर।
तो चलिए, इतने सारे गहरे विचारों में से कुछ मुख्य बातें, कुछ की थीम्स निकालते हैं, क्या है वो?
हाँ जरूर, पहला तो सबसे साफ है अनुभव की प्रधानता,
प्राइमेसी ऑफ एक्सपीरियंस।
सब कुछ अनुभव से शुरू होता है, ज्ञान, विचार, सब
सही। दूसरा?
दूसरा तर्क की सीमाओं को पहचानना, स्केप्टिसिज्म अबाउट प्योर रीजन। ह्यूम दिखाते हैं कि अकेला तर्क हमें दुनिया के बारे में बहुत कुछ नहीं बता सकता। हमारे सबसे गहरे विश्वास आदत और भावना पर टिके हैं, इससे थोड़ी विनम्रता आती है ना?
हाँ बिल्कुल। तीसरा क्या होगा?
तीसरा वो कारण कार्य वाली बात। कारण कार्य एक मानसिक आदत है, बाहरी सच्चाई नहीं। कॉजेशन एज हैबिचुअल एक्सपेक्टेशन, ये जानना बहुत जरूरी है, खासकर आज की दुनिया में जहां हमें हर वक्त बताया जाता है कि ये करने से वो हो जाएगा। हमें पूछना चाहिए क्या ये सच में कारण है या बस साथ में हो रहा है।
कोरिलेशन और कॉजेशन का फर्क। चौथा
वो मैं वाली बात। स्वधारणाओं का एक बंडल है, सेल्फ एज अ बंडल ऑफ परसेप्शंस। कोई एक ठोस परमानेंट मैं नहीं है, बस विचारों और भावनाओं का फ्लो है।
ये वाला तो सबसे ज्यादा सोचने पे मजबूर करता है। पांचवा
वो मशहूर लाइन, तर्क जुनून का गुलाम है, रीजन इज द स्लेव ऑफ द पैशंस। हमारी इच्छाएं, हमारी भावनाएं हमें ड्राइव करती हैं, तर्क बस औजार है।
और छठा?
और सहानुभूति है, मोरालिटी बेस्ड ऑन सेंटिमेंट एंड सिंपथी। सही गलत का फैसला दिल से होता है, सिर्फ दिमाग से नहीं, दूसरों के प्रति हमारी फीलिंग्स से होता है। और जैसे आपने कहा, भारत में भी हम ये देख सकते हैं, कई सामाजिक नियम या नैतिक बातें तर्क से ज्यादा सामूहिक भावनाओं या बस चली आ रही परंपराओं, ह्यूम की आदत पर आधारित होती हैं।
सही कहा। अब ह्यूम के कुछ कोट्स भी बड़े फेमस हैं, जैसे पहला तो वही है ना,
हाँ, तर्क जुनून का गुलाम है और होना भी चाहिए। ये तो मतलब हमारी पूरी सेल्फ इमेज को चैलेंज करता है कि हम कितने रैशनल हैं।
बिल्कुल। दूसरा
स्व के बारे में। स्व विभिन्न धारणाओं का एक बंडल या संग्रह मात्र है, जो एक अकल्पनीय तेजी से एक दूसरे के बाद आती हैं और एक सतत प्रवाह और गति में है। सोचिए जरा, अगर ये सच है तो मैं का मतलब ही बदल जाता है।
तीसरा,
प्रकट होने पर उसके सामान्य साथी यानी प्रभाव की उम्मीद करता है। यह संबंध जिसे हम मन में महसूस करते हैं, वह भावना या इम्प्रेशन है जिससे हम शक्ति या आवश्यक संबंध का विचार बनाते हैं। मतलब कॉजेशन एक अंदरूनी एहसास है, बाहरी चीज नहीं।
कमाल है। और एक और कोट जो शायद बात के काम से है पर इसी सोच से जुड़ा है।
हाँ, वो है, रिवाज ही मानव जीवन का महान मार्गदर्शक है। कितनी सही बात है, हम कितने काम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि रिवाज है, आदत है, सब करते हैं। कॉन्शियस तर्क तो बहुत कम बार लगाते हैं।
बात तो सही है, हमारी ज्यादातर जिंदगी ऑटो पायलट पर चलती है ना।
बिल्कुल, रिवाज और आदत के ऑटो पायलट पर।
ठीक है, ये सब तो बहुत गहरी बातें हो गई, फिलोसॉफिकल, लेकिन सवाल ये है कि आज की तारीख में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ह्यूम के ये विचार कैसे काम आ सकते हैं? कोई रियल लाइफ एप्लीकेशन है इनका?
हाँ बिल्कुल है, मुझे लगता है कई हैं। सबसे पहले तो ये हमें बौद्धिक विनम्रता सिखाते हैं।
बौद्धिक विनम्रता मतलब
अगर हमारे सबसे पक्के विश्वास भी आदत और भावना पर टिके हैं, तो हमें अपने विचारों पर जरूरत से ज्यादा अड़ना नहीं चाहिए। थोड़ा खुलापन रखना चाहिए कि शायद हम गलत हों, दूसरों की सुनने की तैयारी रखनी चाहिए।
ये तो बहुत जरूरी है आजकल। दूसरा
ये हमारी आलोचनात्मक सोच को बेहतर बनाते हैं, खासकर वो कारण और सहसंबंध वाला फर्क।
हाँ, कोरिलेशन वर्सेस कॉजेशन।
एग्जैक्टली। आजकल इतनी इन्फॉर्मेशन आती है व्हाट्सएप पर, न्यूज में, ये समझना बहुत जरूरी है कि क्या दो चीजें सिर्फ एक साथ हो रही हैं या एक वाकई दूसरे की वजह बन रही है। हर चीज को कारण मान लेना खतरनाक हो सकता है।
सही बात है। तीसरा एप्लीकेशन।
तीसरा, ये निर्णय लेने की प्रक्रिया, डिसीजन मेकिंग को समझने में मदद करते हैं, चाहे अपनी पर्सनल लाइफ हो या बिजनेस में हो या लीडरशिप में। ये समझना कि लोग और हम खुद भी अक्सर भावनाओं से प्रेरित होते हैं, तर्क से कम।
हाँ, एडवर्टाइजिंग और पॉलिटिक्स तो इसी पर चलते हैं शायद
काफी हद तक। तो इसे समझने से हम बेहतर कम्युनिकेट कर सकते हैं, दूसरों को बेहतर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और शायद खुद भी ज्यादा सोच समझकर फैसले ले पाएं, भावनाओं को समझकर, ना कि सिर्फ उन्हें अनदेखा करके।
अच्छा पॉइंट है। चौथा
ये सहानुभूति और नैतिक व्यवहार को बढ़ावा देते हैं। अगर नैतिकता नियमों की लिस्ट नहीं बल्कि सहानुभूति और भावना पर आधारित है,
हाँ,
तो अच्छा इंसान बनने का मतलब है अपनी सहानुभूति की क्षमता को बढ़ाना, दूसरों के नजरिए को, उनकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करना। ये ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच लगती है मुझे।
बात तो सही है। और पांचवा
जो मुझे पर्सनली काफी दिलचस्प लगता है, वो स्व के बंडल वाले विचार का व्यक्तिगत विकास, पर्सनल ग्रोथ में इस्तेमाल।
अच्छा,
वो कैसे?
अगर मैं कोई पत्थर की लकीर नहीं हूँ, कोई फिक्स चीज नहीं हूँ, बल्कि एक लगातार बदलता हुआ बंडल हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं बदल सकता हूँ।
हाँ,
मैं सीख सकता हूँ, ग्रो कर सकता हूँ, खुद को रीइन्वेंट कर सकता हूँ। मुझे अपनी पुरानी गलतियों या पहचान से हमेशा बंधे रहने की जरूरत नहीं है। मैं अपने बंडल में नई बेहतर आदतें, नए विचार, नई भावनाएं जोड़ सकता हूँ। ये एक तरह से आजादी देता है ना?
हाँ, ये तो बहुत ही पॉजिटिव नजरिया है
जी
कि हम हमेशा एक वर्क इन प्रोग्रेस हैं।
एग्जैक्टली
तो अंत में अगर इस पूरी चर्चा का सार निकालना हो, आपके लिए सबसे बड़ा टेक अवे क्या है इस किताब से?
और मेरे लिए शायद ये है कि इंसान के कंडीशन को लेकर एक ज्यादा यथार्थवादी, ज्यादा हम्बल नजरिया अपनाना। हम शायद उतने सुपर रैशनल प्राणी नहीं हैं जितना हम खुद को समझते हैं। हम भावनाओं, आदतों, इंस्टिंक्ट से ज्यादा चलते हैं। ये जानना शायद थोड़ा अनकंफर्टेबल हो, पर मुझे लगता है ये सच्चाई के ज्यादा करीब है।
और मेरे लिए शायद ये आइडिया कि हमारा मन सिर्फ दुनिया को पैसिवली देखता नहीं, बल्कि एक्टिवली हमारे अनुभव को कंस्ट्रक्ट करता है, उसे बनाता है। दुनिया वैसी नहीं है जैसी वो अपने आप में है, बल्कि वैसी है जैसी हमारा इंसानी मन और हमारी भावनाएं उसे पकड़ती हैं।
सही।
और इससे सहानुभूति का महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि अगर नैतिकता भावनाओं से जुड़ी है तो दूसरों को समझना ही एक बेहतर समाज बनाने का रास्ता है।
बिल्कुल। और ह्यूम हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं जिस पर हम सब सोच सकते हैं।
हाँ, क्या सवाल?
अगर हमारे सबसे बुनियादी विश्वास, आदत और भावना से शेप होते हैं, तो हम असल में कितना कंट्रोल करते हैं इस बात पर कि हम किसे सच मानते हैं? क्या हमारी मान्यताएं हमारी चॉइस हैं, या बस हमारी कंडीशनिंग और एक्सपीरियंस का नतीजा?
ये तो गहरा सवाल है सोचने के लिए।
मिलेंगे
अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।